हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी उनको उपदेश दे रहे हैं भक्ति के विज्ञान के बारे में, और इस श्लोक में बता रहे हैं कि भक्ति में प्रवेश करने के बाद जो भक्ति की तुलना की गई है एक लता से की गई है ना। तो उस लता को आगे बढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है? लता कैसे बढ़ती है? जल से बढ़ती है। तो उसी तरह जो भक्ति लता है वो किससे बढ़ती है? श्रवण और कीर्तन के जल से बढ़ती है, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की क्या कृपा होती है, गुरु की क्या कृपा होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कृपा शब्द के बहुत सारे अलग अलग समानार्थी हैं, है ना। कभी हम दया बोलते हैं, है ना, कभी आशीर्वाद बोलते हैं। जैसे अभी हमने गाया, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, है ना, करुणा करुणा बोलते हैं कभी कभी। ये अनुग्रह, अनुग्रह ही बोलते हैं कि हम पे अनुग्रह कीजिए, या प्रसाद, है ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो ये अलग अलग शब्द हैं और ये चेंज होते रहते हैं। जैसे बहुत सारे वैष्णव गीत हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, है ना। तो दया का अर्थ है क्या, वास्तव में अर्थ क्या है, है ना। हम गुरु के पास जा रहे हैं कृपा की याचना करने, या भक्तों के पास जा रहे हैं कृपा की याचना करने, तो वास्तव में वो है कृपा क्या, किसको हम कृपा कहेंगे, है ना। तो ये बहुत ही सामान्य रूप से इसके बारे में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं, है ना। इसको अगर हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हम कृपा को क्या ले लेंगे, बहुत सस्ता समझ लेंगे, है ना, बहुत चीप समझ लेंगे, है ना। जैसे मंदिरों में आते हैं लोग, तो जो साधु हैं भक्त हैं उनसे बोलते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए। तो साधु कोई आशीर्वाद देने की कोई मशीन नहीं है, है ना, कृपा देने की कोई मशीन नहीं है। तो आशीर्वाद से क्या समझते हैं कि जैसा हमारा जीवन चल रहा है वैसे चलता रहे, और थोड़ी बहुत परेशानी है इंद्रिय भोग में वो निकल जाए और बाकी जीवन चलता रहे, ऐसा, है ना। या कृपा से ये दिमाग में आता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो आलसी हैं, बस आप कृपा कर दीजिए और हम तर जाएंगे, है ना, हम कुछ नहीं करने वाले, बस कृपा कर दो आप, तो आशीर्वाद दे दो, हम तर जाएंगे। या फिर बोलने के लिए बोलते हैं बस, है ना, कभी कभी आपस में कृपा कर दो थोड़ा, है ना, कृपा कर दीजिए, लेकिन है क्या कृपा, वास्तव में है क्या, केवल बोलने के लिए नहीं बोलना। या कृपा से एक ये भी धारणा होती है कि मैं नियम पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, मैं पुस्तक नहीं पढ़ पाऊंगा, और आप तो बहुत दया के सागर हैं, आप तो, है ना, आप तो, है ना, वो है वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी, है ना, कि आप तो दया के सागर हैं, मैं नियम पालन नहीं कर पा रहा हूँ, पुस्तक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप दया के सागर हैं, आप दया कर दीजिए, है ना। तो मैं तो आलसी बैठा हुआ हूँ, आप दया कर दीजिए, है ना। या कई लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद क्या है, अनलिमिटेडली मर्सीफुल है, है ना, बहुत बहुत कृपा है, है ना। हम बाहर का भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चॉकलेट भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे तो दिक्कत नहीं, बस प्रभुपाद की धोती को पकड़ के रखना है, है ना, और प्रभुपाद हमको भगवत धाम ले जाएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पालन करने की जरूरत नहीं है, बस प्रभुपाद की धोती पकड़ लो और प्रभुपाद हमको भगवत धाम ले जाएंगे अपनी कृपा से, है ना, हम तो आलसी बने रहेंगे। या साधारण लोगों की दृष्टिकोण में कृपा क्या होती है, अरे आपके बच्चे का IIT में सिलेक्शन हो गया, आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, कितनी कृपा है भगवान की, है ना। या किसी घर में जाएंगे तो अरे इतना गाड़ी है, बंगला है, है ना, सब सेटल है, सब कुछ अच्छा है, कितना कृपा है भगवान की आप लोगों के ऊपर, है ना। और मान लीजिए घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, अरे भगवान तो बहुत निर्दयी हैं, भगवान दयालु नहीं है, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं किया, है ना। तो कृपा शब्द क्या हो गया है, भक्ति के क्षेत्र में बहुत ही वेग हो गए, अस्पष्ट हो गया है ना। वास्तव में हम कोई उसको परिभाषित नहीं कर रहा है ना। परिभाषित कर भी रहे हैं तो क्या है, कैसे हमारा इंद्रिय भोग का जीवन चलता रहे और भगवान की कृपा भी मिल जाए, भक्तों की कृपा ही मिल जाए, है ना। एक वो चीटिंग टाइप में मेंटेलिटी हो गई है ना, इसको भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे चीटिंग मर्सी। अगर आप गुरु के पास में जाते हैं इस भावना से नहीं कि मुझे कैसे भगवान की सेवा में रत होना है और कैसे भौतिक आसक्तियों से निकलना है, वो भावना से नहीं जाते हैं, तो गुरु क्या करते हैं, चीटिंग मर्सी दे देते हैं, है ना। शिष्य बोलते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ ऐसा, हाँ गुरु बोले हाँ यस यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया करूँगा। तो शिष्य सोचेंगे हाँ देखो गुरु गुरु ने बोल दिया, भक्त ने बोल दिया, इससे अच्छा क्या होगा, है ना। लेकिन क्योंकि भक्त और गुरु देख रहे हैं कि इसको बोलेंगे कि ये मत करो ये करो तो वो तो उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए ठीक है जो करना है करो, है ना। तो उसको बोलते हैं गुरु या भक्तों की चीटिंग मर्सी, है ना। तो वास्तव में कृपा क्या है, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु इसके पहले के श्लोक में बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच, है ना। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे, प्रसाद आ रहा है, प्रसाद मतलब वही कृपा, ये आशीर्वाद, है ना। तो एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद अपने सन्यासी शिष्य हैं, ब्रह्मचारी शिष्य हैं, कुछ गृहस्थ शिष्य हैं, उनके साथ जा रहे थे ट्रेन में मद्रास से नेल्लोर, है ना। तो प्रभुपाद ऐसे कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे अपने सब शिष्यों के साथ, तो एक ऐसे ही कोई व्यक्ति आया, बोला कि स्वामी जी कृपा कीजिए आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोला क्या आशीर्वाद दूं, तो एकदम सोच नहीं पाए कि ऐसा तो मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो बोले कि अच्छा स्वास्थ्य हो और बिजनेस अच्छा चले और घर में कुशल मंगल हो। तो वहाँ पर एक प्रभुपाद जी के शिष्य बैठे थे, सन्यासी शिष्य थे या ब्रह्मचारी शिष्य, तो प्रभुपाद ने बोला ये मेरा आशीर्वाद है, अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो इनके ऊपर इनको आशीर्वाद मिला और ये ऐसे बन गए, तो अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो आशीर्वाद मिल जाए। तो वो व्यक्ति क्या डर गया और तो वहाँ से चला गया, है ना। तो वो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, है ना। तो जब हमारे जीवन में भक्तों का प्रवेश होता है तब समझना चाहिए कि भगवान की अभी कृपा आई है, है ना। जिस समय जिस क्षण भक्तों का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ, मतलब अभी वास्तव में भाग्यवान जीव बने, है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, उससे पहले कोई भाग्य नहीं है, उससे पहले अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यशाली है ना। जब भक्त हमारे जीवन में आए तब हम भाग्यवान जीव बने, उससे पहले कोई भाग्य नहीं है ना। और गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, और उस समय हमको क्या मिलता है, भक्ति लता का बीज मिलता है, है ना। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि के वृत्तांत में कि नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, है ना, और जब चतुर्मास होता है तो कुछ भक्त आते हैं नारद मुनि के घर रुकते हैं, है ना। तो नारद मुनि उस समय छोटे से बालक थे और जो भक्त होते हैं उनकी वो सेवा करते हैं, उनसे सुनते हैं और उनकी आज्ञा से उनका उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं, है ना। तो नारद मुनि जब इस तरह से उनसे सुनते हैं उनकी सेवा करते हैं तो कुछ समय के बाद वो देखते हैं कि नारद मुनि जो बालक हैं उनका पूरा संसार से धीरे धीरे डिटैचमेंट आ रहा है और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भक्त जीवन में आए, है ना, नारद मुनि जो बालक हैं उनके जीवन में आए तब से चेंज होना चालू हुआ, है ना। भक्तों के आने से पहले मंदिर भी हैं, भगवद गीता भी है, हरे कृष्ण महामंत्र भी है, शास्त्र भी है, सब कुछ है, लेकिन कमी क्या है, भक्त की। तो जब भक्त आते हैं तो हमको मंदिर का इंपॉर्टेंस पता चलता है, शास्त्रों का इंपॉर्टेंस पता चलता है, हरे कृष्ण महामंत्र हम सीखते हैं, नहीं तो उससे पहले सब कुछ है, अभी भी सब कुछ है, लेकिन लोग क्यों भक्ति ग्रहण नहीं करते? क्योंकि भक्तों का संग मिलता नहीं है, या मिलता है तो उसको ग्रहण करना नहीं चाहते, है ना। तो ये भक्ति लता क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या मिलता है भक्ति, भक्त लोग क्या देते हैं, स्माइल पास करते हैं, हैं, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जो कर रहे हो वो करते रहो, है ना। भक्त लोग क्या करते हैं, क्या बता रहे प्रभुपाद, किसी विचार, कार्यक्रम, योजना या युक्ति के लिए सर्वप्रथम योजना की संकल्पना चाहिए, जिसे बीज कहते हैं। तो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई विचार है, तो उसका क्या होता है, एक सीड, शुरुआत होती है, उसको बीज कहते हैं। जिन विधियों, विधि विधानों से मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है, वह भक्ति लता बीज है। तो क्या है भक्ति लता बीज, विधि विधान जिनसे मनुष्य भक्ति में ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित होता है ना, वो है भक्ति लता। तो भक्ति लता कोई ऐसा वेग, कोई टर्म नहीं है, है ना। जब हम विधि विधानों को पालन करना चालू किया सही मनोवृत्ति के साथ, तो हमको समझना चाहिए वो भक्ति लता बीज चला गया, है ना। जैसे वो गीत है ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे तृणापेक्षा आती हिम, है ना, सकल सहाने बल दिया कर निज माने स्प्रियाहीन, है ना। तो कृपा बिंदु दिया, कृपा बिंदु मतलब वो श्रद्धा का बीज चला गया। श्रद्धा का बीज क्या चला गया, कि यस मुझे कृष्ण भक्ति करना है, और यही अंततः जीवन में यही मेरे लिए हितकारी है। इसमें थोड़ी सी श्रद्धा आ गई, एकदम से नहीं आई है, पूरी तरह से नहीं आई है कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अभी पूरी तरह से श्रद्धा नहीं बैठी है, लेकिन हल्की सी हमको श्रद्धा आ गई है कि यस कृष्ण भक्ति करने से मेरा परम कल्याण होने वाला है। तो भक्ति लता बीच चला गया, हमारा प्रशिक्षण चालू हो गया, है ना। तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, डिवोशनल सर्विस क्या है, डिवोशनल सर्विस इज ए सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन, है ना। कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेशन जैसे पौधों को कल्टीवेट करते हैं, खेत में कल्टीवेशन करते हैं, तो क्या होता है, उनको टाइम पर पानी मिलना चाहिए, खाद सही है कि नहीं है, जमीन सही है कि नहीं है, कोई खरपतवार तो नहीं उगा है, करेक्ट, ये सब देखते हैं ना। तो जो भक्ति लता बीज मिला है, तो क्या होता है, जो भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, तो कोई खरपतवार तो नहीं उगा है, वो मिट्टी सही है कि नहीं है, हृदय कठोर तो नहीं है एकदम, हृदय में द्वेष तो नहीं भरा हुआ है बहुत ज्यादा, है ना, और उसको प्रॉपर पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, श्रवण कीर्तन का पानी मिल रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये कल्टीवेट, जैसे पौधे को कल्टीवेट करते हैं, ऐसे क्या होता है, हमारे हृदय में जो भक्ति लता है उसको क्या होता है, कल्टीवेट किया जाता है, उसका क्या पोषण किया जाता है ना, उसको बोलते हैं कि वास्तव में गुरु की कृपा आई भक्ति लता में, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा करने का प्रशिक्षण देता है। ध्यान सुनिएगा, गुरु अपने शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा करने का प्रशिक्षण देता है, यही गुरु कृपा कहलाती है। तो जो ट्रेनिंग है वो गुरु कृपा है, गुरु कृपा नहीं कि प्रसाद दे दिया बस, लड्डू दे दिया, है ना। कई लोग जाते हैं गुरु के पास, बात करेंगे, गुरु के पास बैठेंगे, गुरु का जो आसपास ऑरा है वो तेज है, हाँ अब मेरे सब डाउट पूरे हो गए, बस अब घर जाके अपना इंद्रिय भोग करो। गुरु मत, कब वो गुरु कृपा कब होती है, जब ट्रेनिंग होती है ना। ऐसे माता पिता होते हैं, तो जब बच्चा छोटा होता है तो क्या है, वो बिस्तर पे टॉयलेट भी कर रहा है ना, बाथरूम भी कर रहा है, तो माता पिता साफ करते हैं उसको, है ना। फिर बच्चे को चलना सिखाते हैं, तो वो गिरता है, फिर उसे उठाते हैं, फिर गिरता है, फिर उठाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, चलने लगता है, करेक्ट। और कभी कभी जब माता पिता बच्चे को ऐसे बड़ा करते हैं, तो जैसे छोटा बच्चा होता है माता की गोद में, तो माँ को भी मार देता है, है ना, पैर मार देता है जोर से, या हाथ मार देता है, करेक्ट। लेकिन माँ क्या होती है, ऐसा नहीं, अरे चलो छोड़ो इसको, लेकिन माँ क्या होती है, अपने पास ही रखती है ना, क्योंकि वो अज्ञानता में है, बच्चा क्या है अभी, अज्ञानता में, और जो बच्चा है, हम यहाँ शारीरिक स्तर पे बात कर रहे हैं कि बच्चा जैसे जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 8, 10, 15, 20 ऐसे साल का होता है, तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि मुझे बड़ा करने के लिए माता पिता ने कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना त्याग किया है। अब वो कब समझता है? जब उसके खुद के बच्चे होते हैं। जब खुद के बच्चे होते हैं और उनको बड़ा करना होता है, तो वो सोचता है यार बच्चों को बड़ा करना कोई आसान बात नहीं है, है ना। तो जब उसको कब रियलाइज होता है बच्चे को, जब उस जब वो खुद पिता बनता है या माता बनता है, तब उसको पता चलता है यार मेरे माता पिता ने कितना सेक्रीफाइस किया, है ना। तो उसी तरह जो भक्त हैं, प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं, और इसी तरह हमको, क्योंकि हम भक्ति में क्या है, बच्चे हैं, और भक्ति में क्या है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना। तो जैसे बच्चा अगर टॉयलेट या बाथरूम कर रहा है, तो माँ खुश होती है कि हाँ इसका जो डाइजेशन है सही चल रहा है। तो शुरुआत में कोई एक माला कर रहा है, दो माला कर रहा है, तीन माला कर रहा है, तो भक्त बोलते हैं हाँ अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, उसको चलना सिखाना, धीरे धीरे चलना सिखाना, और चल के हम गिरेंगे भी, है ना। जैसे बच्चे बच्चे क्या होते हैं, जैसे जब एक स्टेज आती है 16 से 20 साल की, तो उस माता पिता को इतना केयर नहीं करते कि मुझे पता है, मुझे सब पता है, मुझे सिखाओ मत, है ना, मुझे सब मालूम है ना। एक वो रिवोल्ट रिवोल्ट की भावना आती है। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे जो गुरु हैं हमको भक्ति में क्या है, चलना सिखाते हैं, और कभी कभी हम जो गुरु हैं या भक्त हैं हमारे लिए किस तरह से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम समझ नहीं पाते, है ना। उसको क्या है, सस्ता ले लेते हैं। जैसे जो माता पिता का जो अनुशासन है या स्नेह है उसको बच्चा समझ नहीं पाता है, उसी तरह जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम जो गुरुजन है उनका भी जो प्रशिक्षण है, स्नेह है या अनुशासन है, वो क्या है, उसको समझ नहीं पाते, उसको सस्ता समझ लेते हैं कि ठीक है वो तो, अब ये क्या है। तो ये बहुत ही मतलब, तो वो कब समझ में आएगा, जब हम खुद प्रचार में जाएंगे। जब हम खुद प्रचार में जाएंगे तो हमको लगता है यार ये तो बहुत भारी काम है, तो ये तो एक एक व्यक्ति को भक्ति में लाना, एक एक को लाना, बहुत बहुत भारी काम, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तब हमको अप्रिसिएशन आएगा कि हमको भक्ति में लाने के लिए कितना प्रयास किया था, जिसको हमको पता नहीं, हमें लगता अरे हम तो खुद चले गए थे प्रोग्राम में, है ना, हम तो खुद प्रोग्राम में गए थे, ऐसा नहीं है, है ना। तो जब हम खुद प्रचार में जाते हैं, पुस्तक वितरण है या कॉलेज में आ रहे हैं या गृहस्थ भक्तों को जिनको भी प्रचार करते हैं, तब हमको रियलाइज होता है कि यस, रियलाइज होना चाहिए एक्चुअली, तब हमको समझ में आता है कि हमारे लिए भक्तों ने कितना प्रयास किया, है ना। जैसे एक भक्त थे बड़ोदरा में, आप लोग को लोग जानते हैं नर्तक गौरांग प्रभु, जो भी वहाँ पर है अभी नंदग्राम में है। तो ऐसे मैं जाता रहता था मंदिर, तो जन्माष्टमी में भी गया और दूसरे फंक्शन में भी गया, लेकिन वो एक बार मिल गए, है ना। तो उन्होंने बोला कि कुछ सिक्सेशन होने वाला है तो आप अटेंड कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे अरे क्या है, तो कौन सिक्सेशन अटेंड करेगा क्या है। उस समय हमारे कॉलेज में प्रोग्राम था, एम्स में प्रोग्राम था, पल्स एक होता है, तो वहाँ पर जाने वाले थे। बोले ठीक है देख लेंगे। तो उन्होंने नंबर ले लिया, नंबर एक्सचेंज हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, मैं कॉलेज में रहता था तो फ़ोन करते थे, तो बोले अच्छा क्या है, कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या है, ऐसे हर 2-3 दिन में फ़ोन करते थे। तो मैंने अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ही पूछ रहे हैं, कुछ तो ज़्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं, तो है ना, इतना सब पूछने की क्या ज़रूरत है। फिर बीच में बोलते थे अच्छा घर पर आ जाए, गृहस्थ है वो, घर पर आ जाया करो, घर पर सैटरडे रुक जाया करो, और सैटरडे संडे मंगल आरती अटेंड करना मॉर्निंग प्रोग्राम। तो यार ये घर में कौन रुकेगा, और ये सब मतलब ऐसे ही शुरू में तो वही होता है ना कि समझ नहीं पाते, है ना। तो ऐसे वो बुलाते रहे, फोन करते रहे, बुलाते रहे, फोन करते रहे। तो एक्चुअली कई सालों के बाद फिर रियलाइज हुआ कि यस उनकी वजह से ही भक्ति में आ पाए, है ना। नहीं तो वो नहीं मिलते तो क्या होता, आज कहीं सड़ रहे होते किसी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में। सही में वो, अगर वो नहीं मिलते तो पूरा जीवन, अभी वो जीवन सोचते हैं तो डर लगता है एकदम, कि वो जो जीवन जीवन था वो तो के बचा लिया उन्होंने, रियली बचा लिया। तो भक्तों की कृपा ये होती है कि जब भक्तों के संपर्क में आते हैं तो उस समय समझ नहीं पाते हैं, है ना। उस समय नेगलेक्ट कर देते हैं या सस्ता समझ लेते हैं, लेकिन उसको समझना चाहिए। तो फिर और कृपा क्या होती है, चेतन चेतामन प्रभुपाद चेतन महाप्रभु बता रहे हैं, माया मुग्धे जीवर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण, है ना। कि माया मुग्ध जीवर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कि जो माया में पूरी तरह से मुग्ध है उसको कृष्ण का ज्ञान स्वतः नहीं होता है। जीवर कृपार कैला कृष्ण वेद पुराण, जीवों पर कृपा करने के लिए व्यास देव जी ने क्या किया, वेद पुराण की रचना की। तो जो शास्त्र है भगवद गीता है वो क्या है, वो स्वयं कृपा है ना। भगवद गीता क्या है, स्वयं ये चैतन्य महाप्रभु पुस्तक के रूप में उपस्थित है। ये भगवद गीता क्या है, श्री कृष्ण पुस्तक के रूप में उपस्थित है। अभी कृपा को हमको लेना है, कृपा तो ऑलरेडी है, हमको लेना है। जैसे क्या है, श्री वैष्णव में दो सेक्ट है, एक है मर्कट न्याय और एक है मार्जर न्याय। तो जो मर्कट न्याय है उनका कहना ऐसा है कि भक्ति कैसा है, जैसे बंदर है, बंदर ने अपने बच्चे को पकड़ के रखा है ना, सॉरी बच्चे ने बंदर को पकड़ के रखा है ना। तो बच्चा छलांग लगा, सॉरी जो बंदर है वो छलांग लगा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और पूरी तरह से पकड़ के रखा है बच्चे ने। तो भक्ति कैसा है, पूरा प्रयास, अपना प्रयास, केवल हमको प्रयास करना है। और एक है मार्जर न्याय, मार्जर न्याय क्या है, जो बिल्ली है अपने बच्चे को मुंह में ऐसे पकड़ के रखती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस कृपा पे निर्भर करना है, भगवान की, गुरु की या भक्तों की कृपा होना चाहिए, उससे हम तर जाएंगे। तो एक एक्सट्रीम क्या है, सब कुछ हमारे प्रयास पर निर्भर है। हम प्रयास करेंगे तो हम प्रगति होंगे, और हम प्रयास नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। एक एक्सट्रीम क्या है, हमें कुछ प्रयास नहीं करना है, बस भगवान और भक्तों की कृपा है, उससे सब कुछ काम बन जाए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर क्या बताते हैं कि भक्ति वास्तव में क्या है, जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया और कुएं में से आवाज लगा रहा है, जोर जोर से आवाज लगा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, और बाहर से एक व्यक्ति आया, उसने क्या कर दिया, रस्सी डाल दी, है ना। तो जो रस्सी है वो क्या है, कृपा है, लेकिन प्रयास क्या है हमारा, उस रस्सी को पकड़ना। और जब वो व्यक्ति बाहर से खींचेगा रस्सी को, तब भी पकड़ के रखना। मान लो हमने रस्सी पकड़ ली और बाहर से व्यक्ति ने खींचना चालू किया और हमने थोड़ा सा हाथ क्या किए, लूज कर दिए, तो क्या होगा, कुएं में जाके गिर जाएंगे, करेक्ट। तो भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा कैसे आ गई, रस्सी के माध्यम से आ गई। अभी हमारी बारी, हमें प्रयास करना है। तो प्रयास भी है और कृपा भी है, भगवान की तरफ से कृपा है, हमारी तरफ से प्रयास है, करेक्ट। लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं, रस्सी को पकड़े हुए हैं, तो हम अपने बल से कुएं से नहीं निकल पाएंगे, निकालने वाले तो जो बाहर के व्यक्ति हैं वो ही निकाल पाएंगे, करेक्ट। तो हम अपने प्रयास से भगवान की कृपा को आकर्षित कर रहे हैं, हम अपने प्रयास से भगवान की कृपा को क्या है, आकर्षित कर रहे हैं। हमने चिल्लाया कुएं में से जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, तब तो रस्सी डालेगा, कुएं में जाके सो गए कुएं में जाके प्रसाद लेके सो गए, तो कौन आएगा, रस्सी रस्सी कौन डालेगा फिर, तो चिल्लाना तो पड़ेगा ना, असहाय होना पड़ेगा ना। इसीलिए तो इतने सारे वैष्णव सॉन्ग हैं, है ना। क्या भक्ति में ठाकुर क्या बोल रहे हैं एक सॉन्ग में, एवे एवे सुनो प्रभु आमी गतिहीन, भक्ति विनोद कहे तब कृपा बिना सकली निराशा, देहो मर मोरे पदाश्रय। कि आपकी कृपा नहीं है तो बस पूरे जीवन में निराशा ही है और कुछ नहीं है, है ना, अगर आपकी कृपा नहीं मिलेगी तो पूरा जीवन निराशा में है, तो हमको चिल्लाना पड़ेगा कुएं में से और उत्साह पूरे टाइट पकड़ के रखना पड़ेगा रस्सी, और जब वो खींचेंगे उस समय भी टाइट होना चाहिए, है ना। तो अभी भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने शास्त्र भेज दिए, गुरु को भेज दिया, भक्तों को भेज दिया, अभी हमारा हमारे ऊपर से है कि हम कितने नियमों को पालन कर रहे हैं, कितने हम सिंसियरली ले रहे हैं। वो बाहर रस्सी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो हमेशा रस्सी डालने को तैयार, अभी हमारे ऊपर है हमें कितना। तो कृपा मतलब जो गुरु के आदेश हैं, उपदेश हैं, उनको पालन करने का प्रयास करना, वो कृपा है। जैसे बारिश है, बारिश हर जगह गिर रही, रेगिस्तान में भी गिर रहा है, पत्थर पे भी गिर रहा है, सागर में भी गिर रहा है, मिट्टी में भी गिर रहा है। रेगिस्तान पे गिरेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। सागर में गिरेगा तो क्या होगा, मोती बन जाएगा, है ना। ऐसे उपजाऊ भूमि पे गिरेगा तो क्या होगा, सब्जियां निकल जाएगी, है ना। अभी हमारा हृदय कैसा है, उपदेश तो गुरु कृष्ण तो दे ही रहे हैं, अभी हमारा हृदय रेगिस्तान जैसा है, हमारा समुद्र जैसा है, हमारा पत्थर जैसा है, कैसा हमारा हृदय, उसके हिसाब से वो निर्भर करेगा कि हम गुरु की कृपा को कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, है ना। कई लोग बोलते भगवान कृपा कीजिए, भगवान दया कीजिए, भगवान ऐसे जीवन में क्यों हो रहा है, ना हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, अभी हमारी बारी है। तो ये शास्त्र और उपदेश के द्वारा गुरु कृपा देते हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाचा, यस्याहम अनुग्रहामी हरिष्य तद धनम शनै शनै ततो धनम त्यजति अस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान बता रहे हैं, इफ आई स्पेशली फेवर समवन, आई ग्रेजुअली डिप्राइव हिम ऑफ हिज वेल्थ, देन द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ सच ए पॉवर्टी स्टेकन मैन अबैंडन हिम, इन दिस वे ही सफर्स वन डिस्ट्रेस आफ्टर अनदर। तो क्या बोल रहे हैं, यस अनुग्रह, अनुग्रह मतलब वही कृपा आशीर्वाद। तो यस्सा हम अनुग्रहामी हरिष्य तद धनम सनई सनई। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिसमें मैं अनुग्रह करता हूं उसका जो धन है धीरे 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 क्या है, हरना चालू कर देता। और क्या होता है, जब उसके रिश्तेदार और मित्र देखते हैं कि ये तो गरीब बन गया है तो उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद दुख आना चालू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं भगवान का अनुग्रह, है ना। ऐसे गुरु महाराज बता रहे थे कि ऐसे कोई व्यक्ति आए, भक्त थे, कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज बोले, क्या क्या आशीर्वाद दो बताओ। बोले, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो उसका आशीर्वाद दीजिए। बोले, आप तैयार हो शुद्ध भक्ति सेवा के लिए, तैयार हैं आप। महाराज फिर ये श्लोक कोट किए कि भगवान की जब कृपा आती है तो भगवान क्या करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, तो आप तैयार हैं, सब छिन जाए आपसे। तो सोचने लगे कि अभी मैं शायद रेडी नहीं हूं इसके लिए, है ना। तो इसलिए कृपा और आशीर्वाद की याचना करने से पहले पहले सोचना चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि क्या आता है, बहुत गुरु मतलब भारी, तो गुरु का जो गुरु से परंपरा उसका पूरा प्रेशर आता है। कृपा मतलब अभी आपको चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। कृपा से लोग सोचते आलस बन गए, बस गुरु कर लेंगे, लेकिन वास्तव में जिस पे कृपा होती है वो चैन से नहीं बैठ पाता। अभी ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वो करना है, ये करना है, उसके जीवन का आराम खत्म हो जाता है। ऐसे शील प्रभुपाद, तो शील प्रभुपाद ने जितने वो फैक्ट्रीज या कुछ अपना बिजनेस चालू किया तो उनके जो सर्वेंट थे वो उन्होंने धोखा दे दिया, पैसा लेके चले गए, है ना। जो भी बिजनेस किया वो फेल हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, तो प्रभुपाद ने ये श्लोक बोला, यस यस्याम अनुग्रहामी हरिष्य तद धनम सनै सनै। कई भगवान ने मुझे अनुग्रह किया, तो भगवान फिर शील प्रभुपाद और घर वालों की तरफ से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, पत्नी की तरफ से प्रॉब्लम हो रहा था, प्रभुपाद फिर उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, है ना। जैसे फिर नारद मुनि का जो वृत्तांत हमने देखा, नारद मुनि के वृत्तांत में क्या हुआ, उन्होंने सेवा किया भक्ति में प्रगति हुआ और उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अभी छोटे बालक हैं, पिता भी नहीं है, केवल माँ थी और माँ की मृत्यु हो गई। तो उसी कि भगवान बुलाते हैं, अपने पास खींचते हैं भगवान। अगर हम सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, सीरियसली भक्ति कर रहे हैं, तो इस चीज को हम फील कर पाएंगे कि भगवान और भक्त क्या हमको खींच रहे हैं। यह हर किसी के जीवन में आएगा कि पुलिंग हो रहा है अभी, है ना। पुलिंग मतलब जो आसक्तियां हैं उसको, उससे हमको खींचा जा रहा है। मैं फाइनल ईयर में था तो हमारे बहुत बहुत सब्जेक्ट थे, सर्जरी, मेडिसिन, और भक्ति में आने से पहले जो भी लेटेस्ट एडिशन है वो खरीदना है, और सबसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना है। क्यों? जिससे अच्छी तरह से पेशेंट की सेवा कर पाए, है ना, सारे केस हैंडल कर पाए। अलग अलग ऐसे बुखार है, तो अभी 100 तरह के बुखार है, तो पता नॉलेज होना चाहिए ना। कुछ गलत दवाई दे दिया, गलत डायग्नोसिस कर दिया, है ना, तो ऐसा था कि बहुत अच्छे पढ़ेंगे और सब सारी रेफरेंस बुक, सारी लाइब्रेरी पूरा पूरा पढ़ा लेंगे। लेकिन प्रभुपाद और भक्तों ने क्या खींचना चालू किया, और जब खींचते हैं तो डर भी लगता है, उस समय डर भी लगता है क्या होगा ये। तो अभी रियलिटी समझ में आ रही है, लेकिन अधिकार है नहीं उधर उस प्लेटफॉर्म पर एक्ट करने का, तो क्या होगा, डर लगता है। लेकिन जैसे जो भक्ति की किससे तुलना की गई, भक्ति लता से तुलना की गई। लता को अगर ऊपर बढ़ना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अगर कोई लता है जो मनी प्लांट है, उसको आपको ऊपर बढ़ाना है तो क्या है? सहारा चाहिए। यस, तो अगर ऐसी पुलिंग हो रही है, खींचा जा रहा है और सहारा नहीं है तो हम डर जाएंगे। अगर सहारा है, भक्तों का सहारा, आश्रय है, तो उस समय क्या होगा, फिर तो बढ़ते जाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, है? तो इसीलिए आश्रय, भक्ति लता किसी पर आश्रित होना चाहिए। जो कर्म, ज्ञान और योग होता है वो खुद की बल पे होता है, लेकिन भक्ति क्या होती है, किसी पर आश्रित रह के की जाती है। आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो भक्तों का, गुरु का, है ना, भगवान का आश्रय लेंगे तो वो जो डर तो आएगा, है ना। इसलिए भगवान क्या बोले, माँ सुचा, डरो मत। भगवान को पता है कि शरणागति लेंगे अर्जुन तो डर लगेगा, लेकिन अगर भक्तों के आश्रय में तो फिर वो डर चला जाएगा। फिर और भी उदाहरण है, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, तो वो तो उनके पास कोई कृपा मांगने आता था तो बोले ठीक है बैठ जाओ, जब करो, घर मत जाना, अभी बैठ के जब करो, यही रहना या जब करना, बस जो खाने को मिल जाएगा खा लेना, बैठ के जब करना। तो हम क्या रियली अभी कृपा के लिए तैयार भी नहीं है ना, आशीर्वाद के लिए भी तैयार नहीं है। तो गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? आशीर्वाद के लिए जाना चाहिए, लेकिन शास्त्र में क्या बताया, तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एवावि गच्छेत, है ना, कि गुरु के पास क्या जाना चाहिए, तद विज्ञानार्थम, है ना, सुनने के लिए जाना चाहिए, ज्ञान के लिए। ज्ञान मतलब जो भक्ति का ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए जाना चाहिए। सुनने से जितना हम सुनते जाएंगे एक्चुअली जो उपदेश है वही अपने आप में कृपा हो रही है ना। हम बोलते हैं ना, श्री गुरु करुणा सिंधु अधमा जनार बंधु लोकनाथ लोके राजीव, अभी गाएंगे हम, तो श्री गुरु करुणा सिंधु। करुणा सिंधु क्या है? एक हमारे करुणानाथ थे वहां पर पेस पर, अपनी करुणा दिखा के चले गए वो, है ना। तो श्री गुरु करुणा सिंधु क्या है? वो तो उसके वो ही हिंदी में, हम परिभाषा पूछ रहे हैं। करुणा के सागर मतलब अपने उपदेशों से, है ना। जैसे प्रशिक्षण होता है ना, प्रशिक्षण आर्मी में प्रशिक्षण होता है तो कैसे होता है, ट्रेनिंग होती है ना, ये आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी, उसमें क्या होता है, ये इंटर्नशिप है, वो सब ट्रेनिंग ही है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, जो सही ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं केवल सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं सिखाते हैं, हाँ कुछ गलती होती है उसको करेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, जो गुरु हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो उनकी वो वास्तव में वो कृपा है। तो और भी चीजें हैं इसमें, हम यहाँ समाप्त करें। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं कि एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, है ना, कि जो भक्त हैं उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कितनी प्रगति होगी। तो मनोवृत्ति क्या है, एक्चुअली बहुत आसान है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, मैं दास हूँ और मेरा कर्तव्य सेवा करना है। अभी सेवा रिकॉग्नाइज हो रही है नहीं हो रही है, सेवा से पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बस सेवा करते रहना है ना। जैसे एक ट्रेडिशनल सिस्टम में जो पत्नी है पति की सेवा कर रही है, वो कर रही मतलब उसमें ऐसा कोई नहीं कि कुछ रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि वो धर्म है, स्त्री धर्म है पति की सेवा करना। तो शिष्य है उसका एक कर्तव्य है, धर्म है गुरु की सेवा कर। अभी वो भिक्षा लेके आया और गुरु ने उसको प्रसाद के लिए बुलाया नहीं तो वो नहीं जाएगा, है ना। तो हमें ये तो हमको समझते हैं, इतना समझ गए हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, उनकी सेवा करना है। लेकिन सेवा करते समय बहुत सारे क्या होते हैं, प्रलोभन आते हैं, है ना, रिकॉग्निशन मिलता है या पूजा लाभ प्रतिष्ठा होती है, तो सेवा से क्या हम डाइवर्ट हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है फिर मनोवृत्ति में चेंज हो जाता है। और जैसे ही मनोवृत्ति में चेंज हो जाता है तो क्या होगा, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति लता बीज से क्या हो गया, कर्म बीज हो गया, ज्ञान बीज हो गया, पूजा लाभ प्रतिष्ठा बीज हो गया। तो अभी हम जितना श्रवण कीर्तन करेंगे, जितना हम बुक्स पढ़ेंगे, जितना हम प्रचार करेंगे, उतना अहंकार बढ़ जाएगा, क्योंकि बीज क्या है, बीज किस चीज का है, रिकॉग्निशन का या गलत मनोवृत्ति का बीज है। तो कर रहे हैं हम श्रवण कीर्तन, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, और हम उल्टे जा रहे हैं, श्रवण कीर्तन से उल्टे चले जा रहे हैं, करेक्ट। अगर लेकिन बीज सही है, मनोवृत्ति सही है कि यस मैं सेवा के लिए हूं, सेवा करना है, तब श्रवण कीर्तन करेंगे तो भक्ति लता बढ़ेगी। और बीज सही नहीं है, श्रवण कीर्तन करेंगे तो भक्ति लता नहीं, उसमें क्या नाक फनी लग जाएगी। नहीं नहीं, उससे पहले ही थे, उससे पहले ही सीरियस हो चुके थे, लेकिन उनका केवल एक ही आश्रय बचा था, उनकी माँ, है ना। तो भगवान ने उस आश्रय को भी हटा दिया जिससे वो पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर हो जाए। जैसे द्रौपदी का केस, उनका भी केस है, तो वो शुद्ध भक्त है, है ना, उनके जो पति हैं वो भी शुद्ध भक्त हैं, है ना। तो वो इंसिडेंट एक चीज सिखाने के लिए हुआ कि वास्तव में हमारे जो प्रोटेक्टर हैं, हमारे आश्रय हैं, कृष्ण हैं, गुरु हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। तो जो पांच पांडव हैं, पांच एक से एक शक्तिशाली, है ना, जो युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, भीम, अर्जुन, इतने सबके सब पावरफुल, लेकिन फिर भी किसकी शरण द्रौपदी ने लिया, कोई शरण लेने योग्य नहीं, केवल शरण लेने योग्य कौन है, भगवान और गुरु, और कोई नहीं। तो वो इस इंसिडेंट को प्रकाशित करने के लिए ये ऐसा हो, तो ऐसा होगा जीवन में, मतलब सबके जीवन में नहीं होगा, जो जितना हैंडल कर पाएगा उतना ही होगा। अभी परीक्षा भी किसके लिए जाती है, अभी आपने पढ़ाई नहीं की और परीक्षा ले ली तो क्या हार्ट अटैक आ जाएगा तो परीक्षा भी उसी की होती है जिसने थोड़ा पढ़ के रखा है। तो जो भक्ति में थोड़ा सा आगे बढ़ गया उसी की भगवान परीक्षा लेते, क्यों नहीं लेंगे, अब बोलेंगे कि ले सकते हैं। अगर भक्ति में प्रगत नहीं है और परीक्षा ले ली तो भक्ति छोड़ देगा, हाँ यस। ऐसा हुआ जैसे गौड़ी मठ में एक गृहस्थ भक्त थे, तो उनकी जो लड़की थी तो वो चैतन्य महाप्रभु की रोज पूजा करती थी, विग्रह के अभिषेक करना, ड्रेस पहनाना, फूलवाना, सब कुछ करते। उसकी मृत्यु हो गई तो उनके जो पिता, उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु जैसा कोई है ही नहीं, मैं तो उनमें विश्वास ही नहीं करता, ये तो काल्पनिक एक मिथोलॉजिकल फिगर है, अगर चैतन्य महाप्रभु होते तो मेरी लड़की को मरने से नहीं बचाते, बचा लेते, है ना, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी नहीं। तो हमारी भी परीक्षा उतनी होगी जितना हम हैंडल कर पाएंगे। तो हम अपने आप को तैयार करना है कि बड़ी से बड़ी परीक्षा के लिए हम हैंडल कर पाए, तभी तो अनर्थ निकलेगा। तो इसीलिए साधु की परिभाषा क्या है, साधु वैद्य, साधु क्या होते हैं, वैद्य होते हैं, चिकित्सक। और जो एक्सपर्ट चिकित्सक होता है, एक भी रोग नहीं छोड़ता, एक भी कीटाणु नहीं छोड़ेगा पेशेंट में। ऐसे सनातन गोस्वामी में जब चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने गए, तो सनातन गोस्वामी ने अपना जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो छोड़ दिया था, है ना, उनके पास सोने के सिक्के थे, वो भी अपने उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को दे दिए थे जेल से निकलते समय। लेकिन उनके रिश्तेदार ने क्या दिया, एक कम्बल दे दिया, अच्छा बहुत बढ़िया कम्बल। तो कम्बल ओढ़े थे और चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पर आए, अभी आप वृंदावन जाना और वहाँ पर इस तरह से आप सेवा करना। तो ऐसे कुछ दिन हुए चैतन्य महाप्रभु बनारस में रहे, और सनातन गोस्वामी भी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की कंबल की तरफ देख रहे थे। तो सनातन गोस्वामी को लगा कि चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है कि मैं कंबल पहना। ऐसे कई दिन हो गए, तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, गंगा घाट गए और वहाँ पर कंबल एक्सचेंज कर लिया, पुराना कंबल ले लिया और नया कंबल उनको दे दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु के पास में, चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि वो कंबल कहाँ गया, तो बोले वो तो मैं दे आया। बोले हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक वैरागी को ऐसे इस तरह से वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि एक जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, अच्छा चिकित्सक होता है, पूरी तरह से रोग को ख़त्म कर देता है, थोड़े से भी रोग नहीं बचा रहना चाहिए, है ना। तो जो थोड़ा भी विषय रोग है वो अभी ख़त्म हो गया, अभी आप वृंदावन चले, है ना। तो उसी तरह जो अच्छा एक गुरु है, एक्सपर्ट दक्ष गुरु है, वो किसी थोड़ा सा भी अनर्थ छोड़ दे नहीं, उसको भी पूरा निकाल देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए आध्यात्मिक रूप से। तो उसी को अभी पेशेंट वॉलेंटरीली जाता है ना डॉक्टर के पास में, स्वेच्छा से जाता है ना। तो अभी हम कितने तैयार हैं अपनी ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए, जितने तैयार है उतना डॉक्टर करेंगे। यस,
मैंने इसे इसके मतलब ये जो इसके पीछे एक फिलोसफी सुनी है कि नारद मुनि के बाद भक्त आए हुए थे, तो फिर वो उनसे बोलते हैं कि वो भी उनके साथ घुल मिल गया, वो उनसे बोलते हैं कि मुझे भी भगवान के पास आपके साथ भगवान की सेवा करनी है। तो उन्होंने उनसे बोला कि आपकी माता है या फिर कोई, उन्होंने बोला कि जब उनका आश्रय या फिर उनकी मृत्यु हो जाए तब आप हमारे साथ आ सकते हो।
नहीं नहीं, वो दूसरा केस था, वो एक गोस्वामी है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके साथ हुआ था। नारद मुनि तो उस समय बालक थे और वो 4 महीने रहे चतुर्मास में और फिर चले गए। फिर नारद मुनि घर में ही अपना भक्ति कर रहे थे और बहुत सिंसियरली कर रहे थे, लेकिन एकदम से क्या हुआ, वो सर पाया रात में और माता को टच किया, तो माता की मृत्यु हो। वो दूसरा केस है। अलग अलग भक्त के जीवन में अलग अलग तरीके से भगवान, अगर फिक्स रहेगा तो भक्ति, मतलब भक्ति क्या है, सब इंडिविजुअल है ना, कोई मायावादी नहीं कि सब एक है। तो हर भक्त के जीवन में भगवान का अलग अलग प्लानिंग होता है, किस तरह से उसको अपनी शरण में लेके आना, हर भक्त का अलग चलना होता है, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता है। नहीं तो एक सिंपल हो कि हाँ ऐसे ही होगा सबका, तो हम मेरे जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है।
लेकिन अगर डगमगा रहा है तो उसको क्या अप्रोच करना चाहिए, उसको और ये करने।
तो कोई भक्त है जो भक्ति स्टार्ट किया है और वो डगमगा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो सही में भक्ति स्टार्ट किया है पहले तो ये जानना पड़ेगा, सही में किया है कि चलती का नाम गाड़ी। अगर सही में किया है और डगमगा रहा है, तो जैसे भक्ति लता ने आश्रय ले रखा है, ऐसे ही हमें भक्तों का आश्रय लेना, और हमें एसोसिएशन लेना है, और ज्यादा एसोसिएशन में रहना है। एक्चुअली जब प्रॉब्लम आता है तो हम भक्तों से दूर चले जाते हैं, फिर हमें लगता है जब हम पूरा सेटल हो जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ठंडे दिमाग से भक्ति करेंगे। तो जब प्रॉब्लम आएगी तो और ज्यादा एसोसिएशन चाहिए, है ना? आपका बीमारी बढ़ गया, अब डॉक्टर के पास बंद कर देते हैं जाना, तो और डॉक्टर की और क्लोज सुपरविजन में चाहिए होगा। और जो सो कॉल्ड भक्ति कर रहा है और डगमगा रहा है, तो डगमगाता रहेगा और एक दिन गिर जाएगा, फिर भक्ति छोड़ देगा। हमारे पूरा इफेक्ट डालते हैं, अनर्थ तो है जो हमको पकड़ के रखे हैं यहाँ पर, तो अनर्थ है वही तो हमको पकड़ के रखे हैं, काम क्रोध लोभ मोह लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये सब द्वेष ईर्ष्या यही है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति में क्या अंतर है? बीमारी का अंतर है ना, बीमारी चली गई तो वो भी स्वस्थ हो जाएगा। तो एक साधक में और एक सिद्ध में क्या अंतर है? कि साधक में बहुत सारे अनर्थ हैं, तो उस अनर्थ को क्या है? सफाई करना है साधु वैद्य के द्वारा, तो इसीलिए अनर्थ को निकालना है। और जब अनर्थ निकलते हैं, जैसे मैं बोला ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होगा, लेकिन वो दर्द सहन कर लिया बढ़िया, और दर्द सहन नहीं कर पाए तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्त है किसी को कुछ ऐसा बोला या कुछ बताया कि ये करना है वो, तो वो चले जाते हैं बस खत्म, इस जीवन में इतनी भक्ति है। तो वो क्या है, इसलिए भक्ति बहुत लता बहुत वो होती है ना, डेलिकेट होती है ना, बहुत डेलिकेट क्या बोलेंगे हिंदी में, कोमल, बहुत कोमल होती है ना, इसलिए बहुत सावधानी से जो माली होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।